अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के कार्य और शक्तियां अथवा अधिकार का मूल्यांकन करें, या राज्यसभा एक द्वितीय सदन है, गौण सदन नहीं, व्याख्या करें। उत्तर, राज्यसभा की रचना का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 में की गई है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। ए, राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट 12 व्यक्ति जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव हो, अनुच्छेद 50(3) के तहत। बी, राज्यों एवं संघ राज्यों के 238 से अत्यधिक प्रतिनिधि, अनुच्छेद 81(1)(ख) के तहत। कार्य और शक्तियां, पहला, विधायी शक्तियां। राज्यसभा भी लोकसभा के साथ विधि निर्माण का कार्य करती है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयक के संबंध में दोनों सदनों को समान शक्तियां दी गई हैं। अवित्तीय विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी सदन में पहले प्रस्तावित किया जा सकता है। दोनों सदनों से पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। व्यवहार में स्थिति यह है कि सामान्यतया सभी महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो उस विधेयक पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विचार किया जाएगा और विधेयक के भाग्य का निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। दूसरा, संविधान संशोधन को की शक्ति। संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जाएगा जब उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए। तीसरा, वित्तीय शक्ति। राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्ति प्राप्त है, यद्यपि इस संबंध में संविधान के द्वारा राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति प्रदान की गई है। संविधान के अनुसार वित्त विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाएंगे। अनुच्छेद 109 के तहत लोकसभा से स्वीकृत होने पर वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजे जाएंगे, जिनके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक इस विधेयक पर विचार किया जाएगा। राज्यसभा वित्त विधेयक पर अपने सुझाव लोकसभा को दे सकती है, लेकिन यह की इच्छा पर निर्भर करती है कि उन प्रस्तावों को माने या न माने। चौथा, कार्यपालिका संबंधी शक्ति। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं और उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रियों को हटाने का अधिकार नहीं है। पांचवा, विविध शक्तियां। कुछ शक्तियां जिनका प्रयोग वह लोकसभा के साथ मिलकर करती हैं। ए, राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, यह अनुच्छेद 54 के तहत। बी, राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, अनुच्छेद 66 के तहत। सी, राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है। महाभियोग केवल तभी पारित समझा जाएगा जब दोनों सदन इस प्रकार के प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं, यह अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 124(4) के तहत कहा गया। डी, राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रथम बार लोकसभा में ही पारित होकर लोकसभा के पास जाता है, यह अनुच्छेद 67(ख) के तहत। ई, एक माह से अधिक की अवधि तक यदि आपातकाल लागू रखना हो तो इस प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा अलग अलग अपने विशेष बहुमत से किया जाना आवश्यक है। लोकसभा के भंग हो जाने की स्थिति में केवल राज्यसभा का विशेष बहुमत से अनुमोदन ही आवश्यक है। आपातकाल में मौलिक अधिकारों के निलंबन के लिए दिए गए आदेशों का दोनों सदनों के सामने रखा जाना चाहिए, यह अनुच्छेद 552(4) के तहत एवं अनुच्छेद 359(3) के तहत कहा गया है। छठा, विशेष अधिकार। यह भाग ही राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में वरीयता बताती है। लोकसभा को ये अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। राज्यसभा द्वारा ऐसा प्रस्ताव पास कर दिए जाने के बाद संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। बी, संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा ही अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को दे सकती है। राज्यसभा जब तक इस प्रकार का प्रस्ताव पारित न कर दे तब तक संसद या भारत सरकार किसी नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की गठन नहीं कर सकती है। मूल्यांकन। राज्यसभा की शक्तियों के अध्ययन से नितांत स्पष्ट हो जाता है कि राज्यसभा न केवल द्वितीय सदन है वरन द्वितीय महत्व का भी सदन है। शक्तियों की दृष्टि में इसकी स्थिति ब्रिटिश लॉर्ड सभा और अमरीकी सीनेट के बीच में ही कही है। लोकसभा की तुलना में निर्बल होते हुए भी उसकी स्थिति और शक्तियों का महत्व है। पायली के शब्दों में राज्यसभा एक निरर्थक सदन या व्यवस्थापन पर रोक लगाने वाला सदन ही नहीं है, वास्तव में राज्यसभा शासन तंत्र का आवश्यक अंग है, केवल दिखावे मात्र का दूसरा सदन नहीं है। राज्यसभा उन सभी कार्यों को कर रही है जो परंपरागत रूप से द्वितीय सदन के द्वारा किए जाते हैं। भारत जैसे विशाल तथा संघात्मक व्यवस्था वाले देश के लिए संघात्मक व्यवस्थापिका का द्विसदनात्मक होना नितांत स्वाभाविक है। सामान्यतया राज्यसभा का कार्यकरण सफल रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि राज्यसभा एक द्वितीय सदन है, गौण नहीं।